ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज विशेष दिन है, हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर अपनी जो रचना है चैतन्य भागवत में, जब चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना शुरू करते हैं तो कहते हैं, पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जिभायस पुरुक गौर चंद्र अवतार। तो वो कहते हैं कि मैं बारंबार चैतन्य महाप्रभु के जो संगी हैं या चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ, ताकि मेरे जिह्वा से चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है वो उचित रूप से निकल सके। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति तभी किसी महान आचार्य का गुणगान कर सकता है जब वास्तव में उसके ऊपर श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो हो गई है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के महान संगी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का अपना एक विशेष विशेष स्थान है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं ही अपनी रचना प्रार्थना में कहते हैं एक गीत में कि जब इस संसार में कोई महान भगवत भक्त अवतरित होता है तो सर्वाधिक जो आनंद की अनुभूति है वो पृथ्वी देवी को होती है। वो अपने उस गीत में कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, कि ये जो वैष्णव ठाकुर है वो वास्तव में पृथ्वी की असली संपदा है, पृथ्वी का असली धन है या पृथ्वी का एक अमूल्य रत्न है, जिसका वर्णन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में किया है। जब हरिदास ठाकुर इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, आपको इतना दुख नहीं होना चाहिए, मैं ये जगत से जा रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है, बल्कि मैं एक तुच्छ जीव हूं और आपके पास तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं और मेरे जैसा एक निम्न तुच्छ नीच व्यक्ति चला भी जाता है तो आपको क्या दुखी होने का कोई कारण नहीं है। मानो इस संसार में इतने असंख्य जीव है और एक चींटी मर जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से मेरी स्थिति है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास ऐसा नहीं है। हाँ, हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण की मेरे ऊपर अपार कृपा हुई थी, जिसके कारण आप जैसे भक्त का संग मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी आप जैसे महान भक्त के संग से मैं वंचित हो रहा हूं, तो इसलिए मैं बहुत अधिक दुखी हो रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रत्न शून्य हैल मेदिनी, क्योंकि आप जैसा भक्त एक अमूल्य रत्न के समान है, और आप चले जाओगे तो ये पृथ्वी एक रत्न को खो रही है। तो मानो चैतन्य महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो ये पृथ्वी की असली शोभा है, पृथ्वी के असली आभूषण कृष्णा के डिवोटीज हैं जब वो विचरण करते हैं इस पृथ्वी पर। इसलिए पृथ्वी देवी कहती है, कई पुराणों में वर्णन आता है कि मैं आनंदित हो जाती हूं जब वैष्णवगण मेरे ऊपर चलते हैं, नाचते हैं, विचरण करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस संसार में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इस संसार को किसी ने पर्पज या उद्देश्य किसी ने प्रदान किया है तो वो है कृष्णा के डिवोटीज, अन्यथा ये जगत पर्पज से रहित है, उद्देश्य से रहित है। लेकिन भगवत भक्त जब इस जगत में आते हैं तो एक उद्देश्य इस संसार को, इस जगत को प्रदान करते हैं। तो इसलिए आज ऐसे महान आचार्य का गुणगान करने का प्रयास करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय थे। हमने कई बार सुना है नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, और ऐसे तीन डिवोटीज थे जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही चर्चा की थी, पहले से ही सबको बता दिया था इन तीन भक्तों के बारे में। एक तो थे सर्वप्रथम श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, और दूसरा डिवोटी थे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सबको अवगत कराया था, और तीसरे डिवोटी कौन थे, श्रील प्रभुपाद लोचनदास ठाकुर के चैतन्य मंगल में श्रील प्रभुपाद का वर्णन स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते हैं नारद मुनि को कि मैं आऊंगा, हाथ में तलवार खड़ग लैया, खड़ग मीन्स तलवार लेके आऊंगा, संकीर्तन रूपी जो तलवार मेरे हाथ में होगी और उसके द्वारा जो आसुरी भाव व्यक्ति के हृदय में है उसको काटकर फेंक दूंगा और कृष्ण भावना को स्थापित करूंगा। और ऐसा कुछ लोग दूर देश में चले जाएंगे लेकिन उनके लिए भी मैं अपना सेनापति भक्त भेजूंगा जो उनका उद्धार कर सकता है। तो ऐसे ये महान आचार्य जिनका वर्णन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से किया है तो वो कोई सर्वसाधारण नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो चरित्र है मूल रूप से तीन ग्रंथों में पाया जाता है, नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा विरचित भक्ति रत्नाकर जो बहुत विशाल बुक है, चैतन्य चरितामृत से भी बड़ा है, उनके श्लोक संख्या देखी जाए, जिसमें उन्होंने लगभग महाप्रभु के सभी भक्तों का वर्णन किया है, उनके जीवन चरित्र को दिया है, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र पाया जाता है, और जानवा माता के एक शिष्य है नित्यानंद दास, उनके द्वारा विरचित जो प्रेम विलास है उसमें नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन चरित्र विस्तृत रूप से पढ़ने में हमें मिलता है। और एक नरहरि चक्रवर्ती का दूसरा जो रचना है नरोत्तम विलास, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूपेण नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान किया है। तो ऐसे प्रेम विलास में वर्णन आता है कि ये नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनने से क्या होगा, वैसे पद्म पुराण कहता है कि किसी भी वैष्णवों का गुणगान व्यक्ति सुनता है या किसी भी वैष्णव का गुणगान व्यक्ति करता है तो उसके हृदय में जो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन का जो भावना है भगवत सेवा के लिए है, वो स्थापित हो जाता है। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में जब प्रेम विलास में वर्णन आया है कि यदि व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के इस विषय को या नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र को सुनता है तो उसके हृदय में पूर्ण संतुष्टि उसे अनुभव होती है, वो किसी और चीज के लिए लालायित नहीं होता भौतिक चीजों के लिए। और दूसरी चीज कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनने मात्र से व्यक्ति के हृदय में जो भगवत नाम है उसके प्रति आसक्ति जागृत हो जाती है, आसक्ति का जो भावना है वो उदित हो जाता है केवल ऐसे महान आचार्य के बारे में सुनने से। तो हम प्रयास करेंगे कुछ समय के लिए नरोत्तम दास ठाकुर का जो चरित्र है ग्रंथों में बहुत विशद रूप से पाया जाता है, संक्षिप्त रूप में हम उसको श्रवण करने का या चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करते हैं कटवा में केशव भारती से, और संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अवंती ब्राह्मण का भाव अपने हृदय में धारण करके, बहुत दीनहीन का भाव धारण करके महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि मुझे तो वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर भगवत सेवा में दृढ़ हो जाना है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा और संन्यास लेकर निकल ही पड़े वृंदावन की ओर। हाँ, लेकिन वृंदावन की ओर जा रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बहुत ही चमत्कारिक पर्सनैलिटी है, उन्होंने उनको वृंदावन वृंदावन बोल बोल के कहाँ लेके आ गए, उनको शांतिपुर लेके आ गए। और महाप्रभु ने देखा वृंदावन तो चला गया दूर, लेकिन मैं अभी शांतिपुर पहुंचा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृंदावन जाने की जो इच्छा है वो अति तीव्र थी। चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए और अपनी माता के आदेश से उन्होंने अपना निवास स्थान चूज कर लिया। चैतन्य महाप्रभु निवास करने लगे जगन्नाथपुरी में, लेकिन फिर भी जो वृंदावन जाने की लालसा है वो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में तीव्र थी। फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने संगियों को, मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन के लिए महाप्रभु निकले, लेकिन उनका ये बहाना था, चैतन्य महाप्रभु का ये बहाना था वृंदावन जाने का, लेकिन वो उनका अंतरंग कारण क्या था, अपने विशेष दो डिवोटीज को मिलना चाह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन निकले तो हर कोई भक्त उनके साथ जाने के लिए तत्पर था, सब अपनी सेवाएं छोड़कर, इवन गदाधर पंडित ने टोटा गोपीनाथ की सेवा कहते तिलांजलि देता हूं ऐसी सेवा को, मैं निकल जाता हूं आपके साथ जाना चाहता हूं, जहां आप है वहां ही वृंदावन है, वहीं छोटा गोपीनाथ है। तो ऐसे गदाधर पंडित भी कटक तक वहां तक पहुंचते हैं, वहां एक विशेष घाट है गड़गड़िया घाट, जहां भक्त लोग आज भी जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, और उसी स्थान से गदाधर पंडित वापस आ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु आगे निकले अपनी यात्रा के लिए, लेकिन महाप्रभु ने सोचा कि मैं बंगाल से होते हुए जगन्नाथपुरी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, उनके लिए इजी वे दूसरा था, लेकिन जानबूझ के वो बंगाल से गए। उन्होंने कहा मैं गंगा दर्शन करना चाहता हूँ, स्नान करते हुए चला जाऊंगा गंगा का। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले। तो निकलते निकलते चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आते हैं, वहां से फिर चैतन्य महाप्रभु रामकेली पहुंचते हैं। रामकेली पहुंचने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहां अपने दो सेनापति भक्त, एक रूप गोस्वामी और दूसरे सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। वहां उनको तमाल वृक्ष के नीचे दीक्षा दे देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी यात्रा का प्रयोजन पूर्ण हुआ, मैं तो वास्तव में इसलिए आया था कि ये दो भक्तों से मैं मिलूं, रूप गोस्वामी से और सनातन गोस्वामी से। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे बढ़ते हैं, और वहां नजदीकी एक गांव है कनाई नटशाला, जो आज भी है जहां इस्कॉन का सेंटर है। तो कनाई नटशाला में चैतन्य महाप्रभु गए और वहां जाकर गंगा के उस पार देखने लगे, और चैतन्य महाप्रभु वहां ही बैठ गए। उन्होंने कहा मैं यहां से हिलूंगा नहीं अभी। तो नित्यानंद प्रभु कहते कि हे प्रभु, आपने तो जगन्नाथपुरी छोड़ा, नवद्वीप छोड़ा, संन्यास भी ले लिया, केवल कहां जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, लेकिन आज आप यहाँ कनाइनट शाला में आए हो और यहाँ आकर एक ही स्थान में बैठे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं व्यक्ति को उसी स्थान में रहना चाहिए जहां उसे सुख और शांति अनुभव होती हो, जहां किसी भी प्रकार का उपद्रव ना हो, ऐसे स्थान में व्यक्ति को रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये स्थान मेरे लिए सही है। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कहा मैं तो रामकेले में रूप सनातन को मिला, लेकिन फिर भी एक उद्देश्य मेरा बाकी है जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे रहे, वो रात्रि वहां बीत गए, और दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी सुबह अपने सारे भक्तों को लेकर कीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और ऐसे कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के कंधे में अपना हाथ रखा और हाथ रखते हुए चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से क्रंदन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भगवत प्रेम के जो सारे प्रेम विकार है वो प्रकट होने लगे और चैतन्य महाप्रभु कभी गिर रहे थे, कभी उठ रहे थे और कभी कभी हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, तो कभी कभी बोल रहे थे मथुरा मथुरा, तो भक्तों का हृदय इससे फटने लगा और सारे उस गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए चैतन्य महाप्रभु की ऐसी दशा को देखने के लिए। अपनी पलके बिना झपकाए सारे जो गांववासी हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे कि कैसे वो अपने भक्तों के संग में प्रेम भाव में नाम संकीर्तन वो कर रहे हैं। तो ये जब नाम संकीर्तन हो रहा था बीच बीच में महाप्रभु मथुरा मथुरा राधा राधा उच्चारण कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु फिर से जोर से रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे श्री राधिका, मेरा शरीर अभी जल रहा है आपके विरह में, हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपक लता, आप कहा हो, आप आइए, आप मुझे दर्शन दीजिए, तभी मेरा जो जीवन है बच सकता है। आहे मेरे प्राणनाथ कृष्ण, आप कहा हो, यदि आप मुझे नहीं दिखाई दिए तो मैं गंगा में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे जो वक्तव्य है चैतन्य महाप्रभु भावावेश में बोल रहे थे और ऐसे जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ये चैतन्य महाप्रभु की क्या स्थिति हो गई है तो सबको लगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु अपनी अंत्य लीला प्रकट करने वाले हैं, मीन्स इस संसार से इसी स्थान से चले जाने वाले हैं, अंतर्धान होने वाले हैं। सारे भक्त ऐसे सोच ही रहे थे तो अचानक चैतन्य महाप्रभु उठे और फिर से जोर जोर से बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, बोलिए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का भावना बिल्कुल ही बदल गया। अभी ब्रज भावना में श्रीमती राधिका आदि भक्तों को वो पुकार रहे थे लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु अचानक ही एक ऐसे शब्द का उच्चारण कर रहे थे जिसको किसी ने अभी तक सुना नहीं था। सब लोग जब बोलने लगे महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम तो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम कहते हुए गिर जाते हैं और सबको लगा कि कोई एक महापुरुष शायद प्रकट होने वाला है इस संसार में जो जिसका नाम शायद हो सकता है कि नरोत्तम होगा। तो ऐसा करके जब ऐसा सब सोच ही रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु उठते हैं, नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करते हैं और इतना अश्रुपात करते हैं कि वहां वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु का सारा शरीर भीग गया था उनके अश्रुपात से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम का उच्चारण करते जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये नरोत्तम नरोत्तम आप क्यों उच्चारण कर रहे हो, हम तो आपके मुख से हरे कृष्णा सुनते हैं लेकिन आज आप क्या बोल रहे हो, नरोत्तम नरोत्तम। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ये पूछा तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नित्यानंदा, मैंने संन्यास लेकर नवद्वीप को छोड़ा और यहां आकर नीलाचल में जगन्नाथपुरी में मैं निवास कर रहा हूं लेकिन मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी एक इच्छा है, मैं मुझे एक डर है। क्या डर है, हे नित्यानंदा, जब तक तुम हो तब तक ये जो कृष्ण भावना का प्रचार है वो कभी रुकेगा नहीं या इस संसार से कृष्ण प्रेम कभी अप्रकट नहीं होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब आप भी नहीं रहोगे और मैं भी नहीं रहूंगा तो ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है कृष्ण भावना अमृत का, ये कृष्ण प्रेम वितरण का, ये आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी चिंता चैतन्य महाप्रभु को थी। तो चैतन्य महाप्रभु सोच बोलने लगे कि इसी कारण से देख रहे हो उस नदी के पार एक विलेज है गडेरहाट जो राजशाही डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां एक गांव है खेतुरी। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ का इशारा करते हुए नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखो वो ऐसा स्थान है जो भी व्यक्ति उस स्थान में एक बार जाएगा तो वहां से वापस आने की उसकी इच्छा हृदय में कभी नहीं होगी, वो हमेशा के लिए खेतुरे में रह जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो ये वो स्थान होगा, आगे चलकर एक महान भक्त यहाँ प्रकट होगा, जो हम दोनों जाने के बाद ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार ये डिवोटी करेगा जो यहाँ प्रकट होगा। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के समक्ष विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु को संबोधित करते हुए बोलते हैं और वो कहते हैं कि ये जो नरोत्तम है ये वास्तव में हमारे दोनों का कृपा पात्र होगा, और इसका कोई साधारण शरीर नहीं होगा, इसका गौर प्रेममय तनु, हाँ ये शब्द यूज करते हैं कि गौरांग महाप्रभु का जो प्रेम है, जब मूर्तिमान शरीर धारण करता है, मूर्तिमान रूप में प्रकट हो जाता है, तो वो वास्तव में श्रीमान नरोत्तम दास ठाकुर है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोलते हैं और वो कहते हैं कि वास्तव में है नित्यानंद प्रभु, तुम्हारा जितना अनुराग मेरे प्रति है उतना ही अनुराग उस नरोत्तम का मेरे प्रति होगा, और वो आगे चलकर ऐसी कीर्तन विधि प्रकट कराएगा कि आज तक किसी ने ऐसे कीर्तन को नहीं सुना होगा। उस कीर्तन को सुनकर पत्थर और जो लकड़ी है वो पिघल जाएगी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु बहुत आनंदित होते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे उस भक्त के लिए जो मेरा ये प्रेम है वो स्टोर करके रखना है मुझे, क्योंकि जब वो आगे आएगा तो उसको ये प्रेम प्राप्त होना चाहिए और वो आगे चल के उसका वितरण करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां ही पद्मा नदी है, जो गंगा जब बहती है एक शाखा बांग्लादेश में तो उसको पद्मा कहते हैं। तो वो पद्मा नदी में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जाते हैं और जाते ही बहुत उसमें तरंगे उठने लगती हैं और स्वयं ही पद्मा नदी खड़ी हो जाती है, हाँ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। हाँ तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में अपना जो प्रेम है वो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए पद्मा नदी के पास रख रहे थे कि आगे चलकर नरोत्तम उस प्रेम को धारण करेगा और इसका वितरण सारे संसार में करेगा। तो पद्मावती जो पद्मा नदी है वो मूर्तिमान रूप में खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, पद्मावती बोले प्रभु करो निवेदन के मने जाने वो कारण नाम नरोत्तम। तो चैतन्य महाप्रभु पहले तो उसे कहते हैं कि आप क्या करो, इस प्रेम को स्वीकार करो और इसको रखो, आगे चलकर तुम नरोत्तम दास ठाकुर को दो। तो पद्मावती कहते कि बहुत सारे लोग मुझ में आते स्नान करने, मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन है वो नरोत्तम। हाँ जब उसने ये प्रश्न किया तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहर परशे तुम्हें अधिक उथाली बास से नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। कहते कि जो व्यक्ति तुम्हारे जल में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने मात्र से सारी तरंगे उठने लगेगी, सुमानो सुनामी आ रही हो, ऐसा जब होने लगेगा तो समझो वो व्यक्ति कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर है। हाँ तो ये पद्मावती जो भगवत प्रेम दिव्य प्रेम को अपने पास धारण करती है और उसको आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर को देने के लिए तत्पर हो जाती है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वापस वहां से आ जाते हैं नीलाचल और फिर नित्यानंद प्रभु को भेजते हैं कि तुम नवदीप जाओ और प्रचार करो। हाँ किसका प्रचार करो, कृष्ण का प्रचार करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु बहुत चतुर है, वो कृष्ण के अलावा और एक व्यक्ति का प्रचार करते हैं, वो कौन है, गौरांग महाप्रभु। इन्होंने कहा जा रहे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, लेकिन ये कृष्ण के उपदेश के अलावा किसका उपदेश इंट्रोड्यूस करते साथ साथ, चैतन्य महाप्रभु का। ये नित्यानंद प्रभु की विशेषता है, पहली बार नित्यानंद प्रभु ने गौर उपदेश या गौरांग महाप्रभु के उपदेश अपने प्रचार में शुरू किए और उन्होंने कहा भी कि जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है वो वास्तव में मुझे क्या करता है, खरीद लेता है, मैं उस व्यक्ति का हो जाता हूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के लिए ये योजना बनाते हैं और आगे चलकर खेतुरी में जो वहां के जो राजा थे कृष्णानंद दत्त, और उनकी जो पत्नी है नारायणी देवी, ये बहुत सालों से पुत्र की कामना कर रहे थे, तो रोज शालिग्राम का आराधना करते थे, गंगा जल और तुलसी अर्पित करके, जैसे अद्वैत आचार्य करते थे महाप्रभु को प्रकट करने के लिए। तो वैसे ही ये कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी अब पुत्र प्राप्ति की कामना से शालिग्राम की आराधना और सेवा करते थे गंगा जल आदि से। और कुछ समय के बाद कालांतर में एक ज्योतिष ने कहा कि ऐसा पुत्र आप लोगों को प्राप्त होगा कि जो सारे संसार को कृष्ण भावना में डुबो देगा। तो ये बोलकर वो इतने आनंदित हो जाते हैं। और देखा जाता है कि कुछ साल के बाद या कुछ दिन कुछ महीनों में नरोत्तम दास ठाकुर पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। और ये नरोत्तम दास का जब अन्न प्राशन सेरेमनी उन्होंने रखा था कि पहली बार बालक को कुछ अन्न ग्रहण करना कराना है, तो सारे ब्राह्मणों को सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं कृष्णानंद दत्त अपने महल में। तो वहां जब बालक को पहली बार अन्न ग्रहण कराने जा रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर अपना मुंह बंद किए हुए थे और बीच बीच में रोज आते थे, वो मना कर रहे थे, इतने छोटे से बालक थे। तो एक ब्राह्मण डिवोटी ने कहा कि ये बालक ऐसा वैसा अन्न ग्रहण नहीं करेगा, ये तो केवल कृष्ण को अर्पित प्रसाद ही खाएगा तभी ये ग्रहण कर सकता है। तो उसी समय प्रसाद ऑफर किया जाता है ग्रेन्स, और नरोत्तम दास ठाकुर प्रथम जो अन्न है वो प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बड़े हो जाते हैं। तो उनकी माँ उनको प्रेम से नारू पुकारा करती थी, नरोत्तम से क्या हो गए, नारू हो गए। तो ऐसे नारू पुकारा करती थी, उनका इतना अधिक अफेक्शन था कि आचार्यगण कहते कुछ क्षणों के लिए भी नरोत्तम उनके आंखों से सामने ओझल हो जाए तो अत्यधिक पीड़ित दुखी हो जाते थे। तो लेकिन एक दिन ये नरोत्तम दास ठाकुर अपना पढ़ाई वगैरह करते रहते थे और शाम के समय जब वापस आते थे घर में तो अपना जो किताबें वगैरह हैं स्टडीज की वो छोड़ देते थे और दौड़ते हुए जाते थे। वहां एक ब्राह्मण डिवोटी था कृष्णदास, जिनका मुख गौरांग महाप्रभु और उनके संगियों की कथाओं से भरा रहता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर सबको छोड़कर उस डिवोटी के पास जाते थे, ब्राह्मण कृष्णदास के पास, और उनको कहते थे कि आप मुझे सुनाओ चैतन्य महाप्रभु की गुणगाथा को सुनाओ, चैतन्य महाप्रभु के जितने संगी हैं उनके चरित्र को आप मुझे सुनाओ। वो ब्राह्मण थकता नहीं था, एक के बाद एक महाप्रभु का गुणगान करता था। केवल महाप्रभु ही नहीं बल्कि महाप्रभु के भक्तों के चरित्र का भी वर्णन करता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में इतनी तीव्र लालसा हो गई कि कब उस दिन आएगा मैं इन सारे वैष्णवों को मिलूंगा, उनका संग मुझे लाभ हो सके। और उसी के साथ साथ उनके हृदय में एक भावना जागृत हो गई, कबे हम हबो वृंदावन वासी, कि कब मैं वृंदावन का निवासी बनूंगा, कब मैं वृंदावन चला जाऊंगा। अभी उनका एक ही सपना था, क्या सपना था, मुझे वृंदावन जाना है। तो अभी ये जो नरोत्तम बहुत अधिक विरह में थे, दुखी थे, और ऐसी दुखी अवस्था में एक दिन रात्रि स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे नरोत्तम, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ तुम्हारी सारी जो हृदय की इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी यदि तुम कल सुबह जाकर, कहाँ जाकर स्नान करो, पद्मा नदी में, सब कुछ वहां तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर बालक ही थे, वो उठे सुबह और दौड़ते हुए अपने माता आदि को उसकी नजर चुकाते हुए जाते हैं पद्मा नदी में। और पद्मा नदी सोचते थे मैं हमेशा तो इस नदी के किनारे आता था, कभी स्नान करने नहीं कूदा, लेकिन आज नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से उस पद्मा नदी में जाते हैं और जैसे जल का स्पर्श करते हैं तो बड़ी बड़ी तरंगे या लहरें उछलने लगती हैं और जो पद्मा नदी है वो प्रकट हो जाती है और समझती है कि ये वही व्यक्ति है जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरे पास जो प्रेम है वो रखा हुआ था। तो पद्मा नदी आती है और उन्हें जो वो भगवत प्रेम, अभी हम अपने भौतिक बुद्धि से वो भगवत प्रेम क्या है कैसा है उसको समझ नहीं सकते, हाँ
वैष्णवेर क्रिया, एक वैष्णव को समझना हमारे लिए अति दुर्लभ है। तो अचिंत्य कृष्ण प्रेम है, उसको कैसे जाना या समझा जा सकता है। तो वो उनको देती है, तो नरोत्तम दास, उसने जब ऐसे हाथ किया तो नरोत्तम सोचते क्या करो, हाँ तो वो कहते कि इसको ले लो और पी लो, कृष्ण प्रेम को क्या करो, पी लो। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की जो भगवत प्रेम रूपी जो उपहार है उसको नरोत्तम दास ठाकुर पान करते हैं। पान करने मात्र से सारे जो भगवत प्रेम के विकार उनके शरीर से अंत और बाह्य रूप से प्रकट हो जाते हैं। और सबसे पहले क्या हो गया, बाह्य रूप से नरोत्तम दास ठाकुर का जो सांवला वर्ण है वो छूट गया, अभी उनका वर्ण गौर हो गया, गौरांग महाप्रभु के समय समान उसका वर्ण हो जाता है। और उनके हृदय में महाप्रभु के लिए बहुत अधिक विरह की भावना प्रकट हो जाती है और निरंतर क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु के विरह में। और ऐसी अवस्था में वो बाहर आ जाते हैं और हमेशा वृंदावन के भाव में रहते हैं। तो यह घर में उनके पिता और माता सोचते हैं कि हमारा पुत्र कहाँ चला गया, तो उस पुत्र को ढूंढने के लिए कई अपने सेवकों को भेजते हैं। फाइनली उनको पता चलता है कि ये जो नरोत्तम है, मेरा नारू है, वो तो नदी के किनारे है। जब ये नारायणी देवी गई, दूर से देखा, लगता तो मेरा बच्चा है लेकिन इसका कलर कुछ अलग हो गया है, पहले काला सावला था लेकिन अभी कैसे है, गौर तनु है, गौर वर्ण का हो गया है। तो वो जाती है डरते डरते नरोत्तम के पास, कहते बेटा तुम नरोत्तम ही हो ना, तो वो कहते हैं, कहते कि हाँ मैं आपका ही नरोत्तम हूं, आपकी अवस्था कैसे हो गई। कहते हैं कि एक सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। और वो सुवर्ण वर्ण का बालक कौन था, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। वो कहते हैं कि ये सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे हृदय में प्रवेश हो गया, जिसने प्रवेश किया और जिसके कारण मैं आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से क्या हो गया हूं, पूर्ण रूपे न बदल गया हूं। हे मेरी माता, आप मुझे विदा दे दो, मैं कहां जाना चाहता हूं, वृंदावन जाना चाहता हूं। ये शब्द सुनकर नारायणी देवी क्रंदन करने लगती हैं। और कैसे तो नरोत्तम दास ठाकुर को पकड़ के ले आते घर में, घर में आते हैं तो उनका मन घर में नहीं लगता, बारंबार वृंदावन 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 या महाप्रभु के लिए उनका हृदय ऐसे दौड़ता है। तो देखा कि लगा कि ये कुछ विपरीत आचरण कर रहा है, तो उनके पिता ने एक ओझा को बुलाया, लगा कि इसके भूत की बाधा हो गई है, अब ये भूत उतारना होगा। तो भूत उतारने के लिए उस ओझा ने कहा कि जो सियार है उसके ब्रेन का सूप बनाना पड़ेगा, और ये सूप बनाकर पिला, इसको पिलाओ तो ये इसका भूत भाग जाएगा। जैसे प्रभुपाद बीमार हो गए थे बचपन में, डॉक्टर ने कहा मुर्गी का सूप पिलाओ इसको, हाँ तो वैसे ही। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा मेरे लिए एक प्राणी की हत्या हो रही है, तो कहते मैं अभी अपने अपना शरीर छोड़ दूंगा, इसलिए यदि मेरे लिए किसी प्राणी की आप लोग हत्या करोगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने पागल हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, हाँ तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पहले सुना था, हाँ क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर योजना बनाने लगे कि अभी इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे भागना होगा यहां से। हाँ जैसे उन्होंने सोचा, कौन भागे थे पहले, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेने के लिए भागे थे, फिर ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी भागे थे। तो देखा जाए तो ये सारी परंपरा किसकी है, भागने वालों की है, सारे डिवोटीज भाग रहे हैं। हाँ इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के फादर, रघुनाथ दास गोस्वामी के माँ को कहते हैं कि चैतन्य चंद्र बातुल हया चे जहा रहे, कि जो चैतन्य चंद्र का के लिए पागल हो गया है उसको कोई भी इस संसार में बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि ये रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा भागते थे, तो माने का इसकी शादी कर दो ना, जो भी भागता है उसकी शादी करने से ठिकाने में आ जाता है, वो बिल्कुल एक ही जगह स्थित हो जाता है, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी भी करते हैं, तो उनके पिता कहते हैं, देखो इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम, ये रघुनाथ की जो पत्नी है ये इंद्र के इंद्र जो ऐश्वर्य है वो इंद्र के समान है और इसकी पत्नी तो किसके समान है, अप्सरा से भी सुंदर है। कहते ऐसे रघुनाथ को ये दो चीजें संसार में सबको बांध के रखती हैं, इसको इन दो चीजों में नहीं बांधा, ये बंध नहीं पा रहे तो और कौन सी चीज से इसे बांध सकते हो। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है, चैतन्य की सेवा के लिए उन्मत्त हो गया है, उसको इस संसार में किसी कोई भी ऑब्स्टेकल कोई भी बाधा उसको बांध नहीं सकती, चाहे वो आयु हो। सोचो प्रभुपाद है, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए मैड थे, उन्मत्त थे, उनकी आयु उनके लिए कोई बाधा नहीं बनी, उनके पास 40 रुपए थे वो भी कोई बाधा नहीं बने। तो उसी प्रकार से वास्तव में जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए तीव्र अनुराग है, इस संसार में कोई भी बाधा कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकती। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन कुछ बहाना बनाकर अपने घर से भाग जाते हैं और भागते हुए दौड़ने लगते हैं। लगभग कई दिनों तक उन्होंने दौड़ लगाई। अभी तो हमारे लिए लोगों को इजी है भागना, हाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उठाया भाग गए, टिकट निकाला फ्लाइट का ट्रेन का, जहां जितना मर्जी दूर भागो भाग जाएगा, लेकिन वहां तो आपको दौड़ना है, अपने दोनों पांव पर दौड़ना है। वहां आपके पास धन नहीं है, सुविधा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है और आपको वृंदावन पहुंचना है 2000 किलोमीटर यहां बंगाल से, तो किसी भी चीज की परवाह न करते हुए अपने मुंह को वृंदावन की ओर रखते नरोत्तम दास ठाकुर दौड़ने लगे। और कहा जाता है कि वो दौड़ते दौड़ते वाराणसी और इलाहाबाद इन सब स्थानों में आते हैं, महाप्रभु के चरित्र को सुनते हैं, वहां के ब्राह्मणों से जहां जहां महाप्रभु रुके उन स्थानों में विजिट करते हैं, और वहां से नरोत्तम दास ठाकुर फाइनली मथुरा आते हैं। मथुरा में आके विश्राम घाट है, किसी भी आचार्य का वर्णन आया है, अधिकतर जो भी दूर दूर से भाग के वृंदावन आया है, जर्नी की है, वो आकर एक ही स्थान में रुक जाता है, और वो स्थान कौन सा है मथुरा में, विश्राम घाट। वहां आके सबको विश्राम मिलता है, क्योंकि अभी कोई उनको वहां से कोई खींचने वाला नहीं है, ले जाने वाला नहीं है वापस। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ नवद्वीप में आते हैं, नवद्वीप नहीं, यहाँ मथुरा में आते हैं, विश्राम घाट में वहां बैठ जाते हैं, वहां बैठ के स्नान आदि करते हैं, और वो देखते कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने सुना कि आपस में बात कर रहे, बात करते हुए लोगों ने कहा कि अरे ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब अप्रकट हो गए हैं। ये सुनने मात्र से उनका हृदय बहुत अधिक दुखी हो गया, वो सोचने लगे कि इन महान महान वैष्णव गणों को मैं मिल नहीं पा रहा हूं, उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे विरह की भावना उनके हृदय में थी, और एक ब्राह्मण उनको अपने घर में वहां निवास कराता है मथुरा में। उसके पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन के लिए रवाना होते हैं। तो वृंदावन जो भी पहुंचता था तो वह एक फिक्स स्थान था कि वहां सब हर कोई पहुंचेगा जो भी गौड़ से आता है, और वो था गोविंद देव मंदिर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब मथुरा में पहुंचे थे, उसी रात को श्रीनिवास आचार्य जब वृंदावन में थे, उनके हृदय में इतना आनंद होने लगा, आनंद की ऐसी मानो बाढ़ आ गई हो। वह वर्णन आता है कि श्रीनिवास आचार्य सोचने लगे, सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि जरूर कोई कल मैं एक महान वैष्णव से मिलने वाला हूं, जरूर एक महान वैष्णव का आगमन ब्रज भूमि में होने वाला है जिससे मेरी मुलाकात होने वाली है। तो पूरी रात श्रीनिवास आचार्य सो नहीं पाए, और दूसरे दिन नरोत्तम दास ठाकुर जब पहुंच जाते हैं, बल्कि एक दिन पहले ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी के सपने में आकर कहते हैं, अभी जल्द ही नरोत्तम दास ठाकुर का आगमन होने वाला है वृंदावन में, हे जीव गोस्वामी आप प्रमुख प्रमुख वैष्णवों को लेकर गोविंद देव मंदिर जाना, और वहां नरोत्तम दास ठाकुर का क्या करना, स्वागत करना। तो दूसरे दिन जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इतने सारे भक्तों को उन्होंने इकट्ठा किया, और नरोत्तम दास ठाकुर पहुंच ही गए थे गोविंद देव टेम्पल में, और गोविंद देव टेम्पल में पहुंचे और इन वैष्णवों ने उनका स्वागत किया। नरोत्तम दास ठाकुर प्रथम बार इन भक्तों को देखकर आनंदित हो गए और नरोत्तम दास ठाकुर को लेकर सबसे मिलवाया जीव गोस्वामी ने। और इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर वहां रहे वृंदावन में, लेकिन वृंदावन में वो अपनी एक इच्छा पूर्ति करना चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर लोकनाथ गोस्वामी का शेल्टर लो, लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय लेकर भगवत भजन करो, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा स्वीकार करो। तो जब ये लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, लोकनाथ गोस्वामी कहते अरे तुम तो महाप्रभु के कृपा पात्र हो, तुम्हें महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, ऐसा शेल्टर लेके भजन करने की क्या आवश्यकता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आपके वचन सही है, लेकिन स्वयं महाप्रभु ने आज्ञा दी है, मैं उस आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, बल्कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने ईश्वरपुरी का आश्रय लिया, उनसे दीक्षा स्वीकार की, हाँ तो आप मुझे आश्रय दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी मना कर रहे थे, लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अधिक दुखी हो गए और वो सोचने लगे कि किस प्रकार से मैं लोकनाथ गोस्वामी को प्रसन्न करूं जिसके द्वारा उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से फिर नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की एक सेवा करने लगे। लोकनाथ गोस्वामी रोज मॉर्निंग समय में, सुबह के समय में अपना बाह्य कार्य करने के लिए जाते थे मल आदि त्यागने के लिए, और वापस आ जाते थे तो वो जो स्थान जहां वो अपना शौच कर्म आदि करते थे, शौच कार्य, नरोत्तम दास ठाकुर एक झाड़ू लेते थे, उस स्थान को साफ करते थे और वह फ्रेश मिट्टी वगैरह रखते थे, सारा क्लीन करते थे। तो ऐसे कई दिन बीते, रोज लोकनाथ गोस्वामी आते थे उस स्थान में, अपना बाह्य कार्य करते थे, बाह्य कर्म, और फिर चले जाते थे। उन्होंने सोचा कि अरे मैं जब रोज आता हूं देखता हूं कि ये स्थान हमेशा साफ रहता है, तो वो सोचने लगे कौन ये कार्य कर रहा है। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी छुप जाते हैं झाड़ियों के बीच में और वो देखते हैं कि ये तो लोकनाथ है, ये नरोत्तम है जो राजकुमार है, कृष्णानंद दत्त का पुत्र है। तो ऐसे लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू लगाते थे और झाड़ू को अपने छाती में लगाकर क्रंदन करते थे कि हा लोकनाथ, हे लोकनाथ प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपके चरणों का मुझे आश्रय प्रदान कीजिए, ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा और उनकी जो कृपा है मुझे प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की भावना नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में थी और ऐसा सेवा का एटीट्यूड था जिसको देखने मात्र से लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघलता है और उनको लेकर आलिंगन करते और वो कहते आपको ये आप कैसे ये करते हो ये सब कार्य। वो ले आते हैं और कहते अभी मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूं। उनको ले आते हैं उनके जो विग्रह है विनोदीलाल और वो कहते कि नरोत्तम आप जाओ और स्नान करके आ जाओ। स्नान करके आते हैं वो, दीक्षा का वर्णन बहुत विशद वर्णन आता है प्रेम विलास ग्रंथ में, कैसे दीक्षा दी, क्या क्या आदेश दिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको दीक्षा प्रदान करता हूं और उनको दीक्षा देते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी के पहले और आखिरी शिष्य थे, एक ही शिष्य उन्होंने बनाए और वो नरोत्तम दास ठाकुर थे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मैं हजारों हजारों फॉलोअर्स नहीं चाहता, नच तारा सहस्रशः, हजारों हजारों तारे नहीं चाहिए, एको चंद्र तमो हंति, एक ही चंद्रमा चाहिए जो तमो अंधकार को क्या करता है, दूर करता है। तो उसी प्रकार से ये नरोत्तम दास ठाकुर रूपी जो चंद्रमा जैसा शिष्य उन्हें प्राप्त हुआ, जिसने सारे तप्तमय जो जगत है, संसार दावाग्नि से सारा जगत जल रहा है, उसको शीतलता प्रदान की है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर उनका शेल्टर लेते हैं और सेवा करते हैं और वो फेवरेट डिवोटी बनते हैं या स्टूडेंट बनते हैं जीव गोस्वामी के। तो उस समय ये तीनों ये भक्त श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य थे, लेकिन ये तीनों इतने प्रेम आदि से रहकर जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते थे। जीव गोस्वामी से सारी चीजें उन्होंने सीखी। और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे आचार्य थे जिन्होंने वृंदावन में मानसी सेवा को सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा एक दिन वो अपना ऐसे उंगली बांध के आ गए जीव गोस्वामी के पास। उन्होंने कहा, आपका ये उंगली ऐसा बंधा क्यों है? कहते जल गई है। तो कहते कैसे जल गई? कहते श्रीमती राधा रानी स्वप्न में आदेश दिया था कि आप चंपक लता के अंडर, जो चंपक मंजरी, मुझे याद नहीं कौन सी मंजरी है, चंपक मंजरी, हाँ चंपक लता सखी के अंडर चंपक मंजरी हो और आपकी सेवा है दूध बॉयल करने की। तो ऐसे कहते हैं कि मैं जब अपनी मानसी सेवा में श्रीमती राधा रानी के आदेश पर चंपक लता के अंडर राधा कृष्ण के लिए दूध बॉयल कर रहा था, मानसिक सेवा, और जो अत्यधिक गर्म था उबल के गिरने वाला था, तो पतीले को ऐसे उठा के नीचे रखा मानसिक सेवा में, तो उससे क्या हो गए, मेरी उंगली जल गई है। मन में उनका हाथ उंगली सारी जल गई थी। तो ये देखकर जीव गोस्वामी आश्चर्यचकित होते हैं कि ब्रज में ऐसी मानसिक सेवा की भावना तो तुमने प्रकट की है। तो वो टाइटल उनको देते हैं। पहले तो श्रीनिवास आचार्य को आचार्य टाइटल उन्होंने दिया था एक विशेष पास टाइम के कारण, और अभी जीव गोस्वामी उनको एक टाइटल देते हैं। क्या टाइटल देते हैं? महाशय। राधाराज चरणाश्रय करे से ही महाशय। राधा रानी के चरण का जिसने आश्रय लिया है वो वास्तव में महाशय है। तो ऐसा महाशय जो उपाधि है ठाकुर, ये उसके साथ जोड़ते हैं वो जीव गोस्वामी। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, ऐसा उपाधि से ग्रस्त, मानो कोई महान राजा हो, किंग ही लगते उनका नाम उच्चारण करो तो ऐसे लगते महान राजा है, डिवोटी में राजा है नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर उनसे शिक्षा आदि लेते हैं। एक दिन जीव गोस्वामी सोचते हैं कि अभी बहुत ग्रंथ हो गया, अभी इनका वितरण भी करना है। गोस्वामी ने इतना लिटरेचर दे दिया, अब इसका वितरण भी तो करना चाहिए। तो इन्होंने इन तीन भक्तों को चूज किया, श्रीनिवास आचार्य को मुखिया बनाया, टीम लीडर, और उन्होंने इन दोनों को कहा कि हम इन दोनों के इनके अनुगत होकर सेवा करो और चले जाओ बंगाल, गौड़ देश वहां और ओडिशा, वहां जाकर क्या करो, इन ग्रंथों का वितरण करो। तो एक बैलगाड़ी अरेंज की, 11 बॉडीगार्ड्स अरेंज किए जीव गोस्वामी ने मथुरा से, और बॉक्सेस अरेंज किए सारे जो उनकी पांडुलिपि बुक्स है उसमें भर दी, और बड़ा उनका उनके जाने की तैयारी की, और उनको मालाएं वगैरह पहनाई अलग अलग विग्रहों की, और सबने जाकर इन महान महान आचार्यों से आशीर्वाद मांगा अपनी सेवा के लिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी आदि से। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, तो ये आखिरी मुलाकात थी लोकनाथ गोस्वामी से नरोत्तम दास ठाकुर की, फिर से मिले नहीं वो अपने गुरु से कभी। नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में गिरे और रोने लगे। अभी उनको इतना दुख हो रहा था कि आध्यात्मिक गुरु, अभी अभी तो मैंने दीक्षा ली थी, अभी कुछ ही महीनों में मैं वापस जा रहा हूँ सेवा के लिए, और पता नहीं मैं वृंदावन वापस आऊंगा या नहीं। वापस आना मतलब कितना चल के आना है, अब सोचो। तो उन्होंने सोच कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए, बल दीजिए, कृपा दीजिए इन आचार्यों की सेवा करने के लिए। तो दो आदेश लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दिए थे। एक आदेश था कि हे नरोत्तम, तुम नित्य प्रति विग्रह की आराधना करना, और दूसरा आदेश दिया कि अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार के लिए समर्पित कर देना। तो ये दो आदेश वो प्राप्त करते हैं, और इन दो आदेशों को प्राप्त करके जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो निकलते हैं कहाँ के लिए, बंगाल के लिए श्रीनिवास आचार्य के साथ। और श्रीनिवास आचार्य ये सब आते हैं, फिर वान विष्णुपुर जो बंगाल में एक स्थान है, वहां विष्णुपुर आज भी आप जाते हो तो वो बिल्कुल वृंदावन लगता है। आज भी वहां वो जो वीर हम्बीर राजा थे उन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए थे, जहां देखो वृंदावन जैसे मंदिर है। अभी तो कई मंदिरों में विग्रह नहीं है, तो वहां बहुत सारे विग्रह है मदन मोहन आदि। तो उस स्थान में पहुंचते उनके ग्रंथ सारे
चुराए जाते हैं राजा के द्वारा, तो श्रीनिवास आचार्य उनको कहते श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम को आदेश देते हैं कि आप लोग आगे बंगाल और ओडिशा चले जाओ, प्रचार करो, मैं इन ग्रंथों को ढूंढने का प्रयास करूंगा, हाँ तो और आपको लेटर भेज दूंगा, न्यूज दे दूंगा कि ग्रंथ मिले या नहीं। तो उनकी आज्ञा को पाकर नरोत्तम दास ठाकुर निकलते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर फिर से अपने गांव जाते हैं। पहली बार अभी लंबे समय के बाद खेतुरी जाते तो वहां सब कुछ बदल गया था। उनके जो चाचा थे कृष्णानंद दत्त, उनके जो पिता के भाई थे पुरुषोत्तम दत्त, उनका पुत्र संतोष दत्त जो थे उनको अभी राजा बनाया गया था। और नरोत्तम दास ठाकुर जाते तो उनका भव्य स्वागत होता है और नरोत्तम दास ठाकुर वहां रहते हैं और बहुत अधिक प्रचार करते हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर कुछ साल तक, कुछ महीनों तक वहां रहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मुझे नवद्वीप जाना है, तो वहां से नवद्वीप जाते हैं, फिर वहां से श्रीकंठ, जाजीग्राम, कठवा, फिर जाते हैं जगन्नाथपुरी, क्योंकि जगन्नाथपुरी के भक्त सोच रहे थे कि ये नरोत्तम कब आएगा। हाँ, उसमें बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद वहां गोपीनाथ आचार्य आदि इंतजार कर रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब जाते हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और एक रात्रि में जब वहां सोते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं। स्वप्न क्या देख रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर स्वप्न जगन्नाथपुरी में? नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा कि रथ यात्रा हो रही है और रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के संग नृत्य कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य भी है, नित्यानंद प्रभु है, रामानंद राय है, बहुत सारे भक्त नाच रहे गा रहे हैं और नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को भी वहां देख रहे हैं। वो एक कोने में खड़े हैं, वहां से ऐसा दृश्य देख रहे हैं। तो ये जब नरोत्तम दास ठाकुर ने देखा तो वह चैतन्य महाप्रभु आते और उसका हाथ पकड़ लेते नरोत्तम दास ठाकुर का, कहते नरोत्तम तुम कोने में खड़े हो। हाँ, नरोत्तम को कहते हे नरोत्तम तुम क्या करो, वापस चले जाओ खेतुरी गौड़ देश होकर और वहां जाकर क्या करो, ये जो नई कीर्तन की विधि है तुम जाकर शुरू करो, जिसके द्वारा सारा जो जगत है मंत्र मुग्ध हो जाएगा और तुम अपने म्यूजिक और तुम्हारे कीर्तन के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा क्या करो, मेरा जो मिशन है और मेरा जो उद्देश्य है इस संसार में आने का, या मेरे जो पास टाइम्स है उनका गान करो, तो ऐसा करने मात्र से तुम्हारी सारी जो चिंता है दूर चले जाएगी और तुम कृष्ण भावना का प्रचार कर पाओगे। और आगे चलकर चिरंजीव सेन का पुत्र है रामचंद्र कविराज, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, ऐसा महाप्रभु ने बोला। कि स्वप्न टूटा तो नरोत्तम दास ठाकुर देखते, अच्छा मैं तो जगन्नाथपुरी में हूं, तो फिर कहते महाप्रभु का ये आदेश है। जगन्नाथपुरी से निकलते हैं, जाजीग्राम आते हैं, श्रीनिवास आचार्य को मिलते हैं, श्रीकंठ में वो रघुनंदन ठाकुर, मुकुंद सरकार, नरहरी सरकार आदि को मिलते हैं और वहां से वापस वो खेतुरी आते हैं। खेतुरी आकर नरोत्तम दास ठाकुर, अभी उन्होंने कभी कीर्तन गाया नहीं है, तो नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुरी गांव में थे तो वहां भगवान श्री चैतन्य फिर से स्वप्न में आकर कहते हैं कि मेरा एक विग्रह अभी भी है, जब मैं प्रकट हुआ था तब से एक यहाँ एक जमींदार है, उसका जो राइस का गोडाउन है उसके अंदर मेरा एक विग्रह है, उसको तुम निकालो और उसकी आराधना शुरू करो। तो जो जमींदार था उसका बहुत बड़ा गोडाउन था राइस का, कई सालों से बंद था क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सर्प निवास करते थे, कोई भी वहां घुसने का प्रयास करता था तो सर्पों को देखने मात्र से डर के भाग जाता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर सुबह उठे और कृष्ण की महिमा का गान करते हुए उस जमींदार के पास गए और उन्होंने कहा मुझे आपके गोडाउन में घुसना है, मुझे बहुत मूल्यवान निधि वहां रखी है मेरे लिए, उसको मुझे प्राप्त करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को कहते आप पागल तो नहीं हो गए, जमींदार कहते हैं सालों सालों से लोग वहां नहीं जा रहे हैं, वो इतना सारा धान आदि है लेकिन वहां इतने सर्प है, तो आप कैसे हिम्मत करोगे वहां जाने का? नरोत्तम दास ठाकुर कहते मुझे कोई चिंता नहीं है सर्पों की। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर उस गोडाउन का दरवाजा खोलते हैं, वो सर्पों को पता चला कि ठाकुर महाशय आ रहे हैं,
सर पहले से ही भाग गए वहां से, और महा नरोत्तम दास ठाकुर अकेले घुस रहे थे अंदर। नरोत्तम दास ठाकुर गए अंदर, और वो अंदर गए, बहुत अंदर अंदर गए, तो वहां उन्होंने देखा मूर्तिमान चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है और विष्णु प्रिया देवी का भी है। उन विग्रह को ले आके अपने ऐसे हाथ में धारण करते हुए सब लोग आनंदित हो जाते ये देखकर। और नरोत्तम दास ठाकुर विग्रह को लाते हैं अपने घर में और लाकर उनको सामने रखते हैं और उनको निहारते रहते हैं। जब वो निहार रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर के मुख से अभी पहली बार कीर्तन निकला, आज तक उन्होंने गाया नहीं था। वो केवल महाप्रभु चैतन्य के इस विग्रह के सामने, उनके फेवरेट विग्रह थे, गौरांग उनका नाम रखा था उन्होंने, और ऐसे गौरांग महाप्रभु के विग्रह को देखकर वो अश्रुपात कर रहे थे और उन्होंने गाना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन शुरू किया तो वर्णन आता है कि स्वर्ग के गंधर्व आदि वो फीके हो गए। उन्होंने सोचा ये तो हमसे बढ़कर गाता है, और ये तो वो गंधर्वज वगैरह देवतागण कहते कि मनुष्य रूप में खेतुरी में आए, नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिरे और उनसे वो कीर्तन सुनने के लिए वहां बैठ गए। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का अद्भुत कीर्तन था, और ऐसे कहा जाता है कि वो कीर्तन जिसके द्वारा इवन नास्तिक पाषाणी व्यक्ति भी का हृदय पिघल जाता था, इवन जो पत्थर है वो भी पिघलने लगते थे जब नरोत्तम दास ठाकुर गाते थे। उनकी ये विशेष विधि थी कीर्तन की। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वहां रहे और फिर उन्होंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि मनाना चाहिए। तो ये जो गौर पूर्णिमा देन है ये वास्तव में किसकी देन है, नरोत्तम दास ठाकुर की है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि बहुत बड़ा उत्सव मनाना है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, गौर पूर्णिमा। तो उन्होंने फिर श्रीनिवास आचार्य उनके बहुत क्लोज थे, और फिर बाद में श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र कविराज उनके बहुत सन्निकट हो गए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य से मिले और दोनों में आपस में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एक उत्सव मनाना चाहिए हमें, मैं सोच रहा हूँ खेतुरी में, और आप मुझे बताओ किसको किसको इन्वाइट करना है, कहाँ कहाँ इन्विटेशन भेजना है। तो सारे गौड़ देश में, ओडिशा में, सब जगह इन्विटेशन भेजा और हजारों हजारों लोग, हजारों हजारों चैतन्य महाप्रभु के संगी जिनके मुखिया जानवा माता थी, वो सब आते हैं खेतुरी ग्राम में और वहां विग्रहों की पहले स्थापना करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने 6 विग्रह स्थापित किए थे, गौरांग वल्लभी कांत श्री ब्रज मोहन श्री कृष्ण श्री राधा कांत श्री राधा रमन। तो ऐसे विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। और फिर संक्षिप्त में हम वर्णन करते हैं कि उस दिन, फिर जिस दिन महाप्रभु का आविर्भाव था, तो सब लोग सुबह एकत्रित हो गए और अलग अलग भक्तों को माला चंदन आदि अर्पित किया गया और इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा की गई, और सब ने कहा कि हे नरोत्तम आप उठ जाइए और आप क्या कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत विनम्रता का भाव उन्होंने प्रकट किया, कहते मेरी स्थिति एक घास के तिनके के समान है, आप जैसे बड़े बड़े भक्त जो इतने उन्नत उन्नत आचार्य गण है आपके सामने मैं क्या कीर्तन करूं। लेकिन इन सब की आज्ञा को अपने शरीर सर में धारण करके नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करना शुरू करते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया तो जो कभी नहीं होने वाली चीज आज हुई थी, क्या कि चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद अप्रकट हो गए थे वो पंच तत्व के सहित चैतन्य महाप्रभु सबके साथ आकर वहां कीर्तन के बीच में नाचने लगे। और ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य के गले में गला डाल के नाचा, नित्यानंद प्रभु ने नरोत्तम का हाथ पकड़ के उनके साथ डांस किया। तो ऐसे सब लोग नाच रहे थे, सारे पार्षद जो पहले अप्रकट हो गए थे, और जब नाचने लगे अचानक ये सब लोग अप्रकट हो जाते और देखते कि सारे फिर से अप्रकट हो गए तो सब मूर्छित हो जाते हैं। और एक ही डिवोटी वहां, जिसका क्या कह सकते, चेत अवस्था में था, एक ही भक्त सौदा एक ठीक था जो देखा कि सारे हजारों लोग मूर्छित हो गए, नरोत्तम दास ठाकुर आदि, तो वो उसने क्या किया, फिर सबके ऊपर पानी डाला और उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके सबको उठाया, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, जानवा माता आदि। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत बड़े देन है, बहुत कुछ है उनका वर्णन जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। और प्रभुपाद के फेवरेट आचार्यों में से एक नरोत्तम दास ठाकुर है। श्रील प्रभुपाद लंदन में जब थे तो प्रभुपाद जहां मर्जी जाओ संसार के कोने में, हाँ, वो रोज गाया करते थे कीर्तन। तो जब लंदन में थे तो प्रभुपाद ने अपना कुर्ता उतार के रख दिया साइड में और पुरुषोत्तम उनके सेवक को कहा कि हारमोनियम लेके आ जाओ। हारमोनियम लाया, प्रभुपाद को कोई नहीं चाहिए कि आगे सुनने वाले भी होने चाहिए। हारमोनियम लेते थे प्रभुपाद और इन वैष्णव आचार्यों को गीत अकेले गाते थे, करताल हो या ना हो, मृदंग हो या ना हो, हम तभी गाते जब सब कुछ हो और लोग भी हो। प्रभुपाद केवल हारमोनियम में गाते रहते थे अकेले। और उस समय यमुना माता जी आ गई, उसने सोचा आज प्रभुपाद गा रहे थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं कुछ प्रश्न पूछूं आपको। वो पूछती हैं, प्रभुपाद अब तो बहुत सॉन्ग गाते हो, बताओ फेवरेट सॉन्ग कौन सा है प्रभुपाद को बोलते हैं। प्रभुपाद कहते तुम पहले बताओ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो यमुना देवी दासी कहती है मेरा फेवरेट सॉन्ग है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा स्तोत्र चेतो दर्पण मार्जनम। तो वो कहती प्रभुपाद अभी आप बताओ आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है। प्रभुपाद कहते नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हरि विफले जन्म गोवायनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया वेश खायनु। हाँ, तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है कि हरि हरि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं करके मैं जान बुझ के क्या कर रहा हूँ, वेश खा रहा हूँ। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का प्रतिदिन हम स्मरण करते हैं, जिसको प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया, गुरु वंदना हम रोज गाते हैं। हाँ, तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर एक विशेष आचार्य हैं। समय तो हो गया, तो नरोत्तम दास ठाकुर की कई सारी रचनाएं हैं, उनमें से दो विशेष रूप से प्रमुख रचना है, दो ग्रंथ उन्होंने लिखे, एक है प्रार्थना और दूसरा है प्रेम भक्ति चंद्रिका। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को पूछा कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते व्यक्ति के पास दो आना होना चाहिए, उस समय आना या कौड़ी चलता था, हमें 2 रुपीज होने चाहिए। हाँ, दो तो कहते क्या करेंगे 2 रुपए होने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, कहते क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने कहते 2 रुपए में कृष्ण प्रेम मिलेगा, मार्केट में चले जाना और नरोत्तम दास ठाकुर की 2 किताबें खरीद के ले आना, हाँ, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, और बस। हाँ, क्योंकि आचार्यगण कहते हैं कि वेद व्यास ने जितना लिटरेचर लिखा ना उसको महाप्रभु ने कहा इसको जरा कंडेंस करो इन गोस्वामियों को, गोस्वामी ने उसको कंडेंस फॉर्म में भक्ति शास्त्र दे दिया अपने लिटरेचर और संस्कृत में। उसके बाद वो गोस्वामी लिटरेचर भी हाँ भक्तों के लिए हैवी महसूस हो रहा था, फिर कहा इसको कंडेंस कर दो, तो उसका कंडेंस फॉर्म कृष्णदास कविराज ने किया, आचार्यगण कहते चैतन्य चरितामृत। और इतना विशाल इतने संस्कृत श्लोक चैतन्य चरितामृत, फिर आगे कहा ना इसको भी कंडेंस करो। तो आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर ने उसका कंडेंस फॉर्म किया, वो था प्रेम भक्ति चंद्रिका। और प्रभुपाद ने तो और कंडेंस और इजी कर दिया है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत बड़ी देन है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे मैं छोटा था ना तो स्कूल में जाता था और बाकी स्कूल की किताबों के अलावा 2 किताबें और पढ़ता था, डेस्क में वो स्कूल के ग्रंथ रखता था, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, लेकिन डेस्क के नीचे जो छोटा सा जगह था उसमें 3 किताबें रखता था, एक था प्रेम भक्ति चंद्रिका, एक प्रार्थना और चैतन्य भागवत, इन 3 को छुप छुप के पढ़ता था। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने बहुत प्रचार किया, हजारों लोगों को दीक्षा दी, ब्राह्मणास, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने भक्त बनाया और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त किया। तो आज विशेष दिन है, ऐसे महान आचार्य का स्मरण करना चाहिए, हो सके तो और ग्रंथों से पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा इन आचार्यों के प्रति हमारा अनुराग होगा। तो माता देवोक्ति कहती है मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि भक्तों से अनुराग रखने मात्र से, अटैचमेंट से क्या होता है, भक्तों से अटैचमेंट होगा आचार्यों से तो मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। वही आसक्ति भौतिक लोगों से हम रखते हैं, हमारे संबंधियों से,
तो नरक का द्वार हमारे लिए हमेशा के लिए ओपन रहता है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं जिनका गुणगान करना चाहिए और सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के केतुरी ग्राम के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।